क्रियाशील हो चलेगा क्या कृष्ण जी? क्रियाशील आते भक्ति उपास्ते चेत कास्ते देशस् धीर्या मान भावो नावचो अस्यां भोसतीषु दर्शिता दर्शिनाथ। ये तो हो गया जी मेरा, कर कर
नहीं।
अच्छा चलो
आते भक्ति
है
ये जो है। हां यार आते भक्ति।
अच्छा उपास्तो ते का भक्ति, उपासना में आपकी क्या भक्ति अनुराग है? चेत यदि ऐसा कहते हो तो ते द्वेषा का तत ईर्या, आपका उपासना में द्वेष कैसा है ये कहो। अच्छा मान बाबा, निर्गुण उपासना में कोई प्रमाण नहीं ये कह रहा है पूर्व पक्षी, कह रहा है निर्गुण उपासना जड़ी तुसी दस रहे जे ओदे विच कोई प्रमाण नहीं है ना वाच, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, ऐसा मत कहो कि कोई प्रमाण नहीं है। ये पूर्व पक्षी ने की क्या है, अस्याम मान बाबा निर्गुण उपासना में कोई प्रमाण नहीं, ते असदांती बोलिया ना वाचा, ऐसा कहना ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा ना कह तू कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि बहु सुरती हु दर्शनाथ बहु सुरती वचनों से उपासना उपलब्ध होती है। बहुत सुरती वचन जिले हैं उपासना कह रहे हैं, निर्गुण जी निर्गुण की उपासना हो सकती है, सुरती कह रही है कि निर्गुण की भी उपासना हो सकती है, कोई प्रमाण का अभाव नहीं है, सुरती प्रमाण है। उत्कास्मिन् तापनीये शैव्यः प्रश्नोथा काठके मांडुकादौ च सर्वत्र निर्गुण उपास्ति रीरिका। इन्हें वेद का प्रमाण दे दिया, जेड़ा तापनीय प्रश्न है काठके मांडुक ये उपनिषद का उन्हें नाम लै दिता ना, इन्हां दे विच प्रमाण है। उन्हें कहना निर्गुण उपासना च कोई प्रमाण नहीं, कहना ऐसे मत कहो, तेन हम प्रमाण दसते हैं। उत्तर स्मिन तापनी है, उत्तर तापनी उपनिषद में शैव प्रश्न अथ काठ के प्रश्न उपनिषद के पंचम प्रश्न में और कठोपनिषद में चा मांडुक आदव और मांडुक तैत्रीय मुंडक आदि उपनिषदों में सर्वत्र निर्गुणोपासिता सब जगह निर्गुण उपासना निर्गुण ब्रह्म की उपासना कही गई है। आप निषेधा ने ना लाता केड़े केड़े पहला तापनी उपनिषद नर्तन तापनी उपनिषद फिर कठो प्रश्नोपनिषद फिर कठो फिर मुंडुक और मांडुक तैत्रीय उपनिषद ये सारे उपनिषद दस दिता इन्हां दे विच निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना किस प्रकार अनुष्ठान करने योग है ऐसी शंका होने है, पर अनुष्ठान का प्रकार बताते हैं फिर किदा करनी चाहिए। अनुष्ठान प्रकार अस्या पंचीकरण ईरितः ज्ञान साधन में तच्चे नेति अनुष्ठान प्रकार निर्गुण उपासना के अनुष्ठान का प्रकार पंचीकरण पंचीकरण नामक ग्रंथ में कहा गया है। इतद ज्ञान साधनम यह उपासना ज्ञान का साधन है, ऐसी उपासना नहीं है, ज्ञान का साधन ही है भी एक ज्ञान का मतलब मुक्ति का साधन साधन है, मुक्ति का साधन नहीं। चेत यदि ऐसी शंका हो तो अतर जह यहाँ पर उपासना के प्रकरण में ना इति उपासना ज्ञान का साधन नहीं, इस प्रकार केना वारिदम किसी ने निवारण किया है। उपासना जरा ज्ञान का साधन नहीं है, किसी ने ऐसे क्या होता है ये कहने की गल नहीं है। किसी ने कहा ज्ञान का साधन नहीं, उपासना अलग चीज है। तो कहते उपासना जी ज्ञान का साधन नहीं है, कोई उपासना नहीं है सरगुण की। सरगुण की उपासना कही है, निर्गुण उपासना जी ज्ञान का साधन ही है। सगुण ब्रह्म की उपासना ही सब लोग किया करते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं करते, ऐसी शंका करके उत्तर कहते हैं कि प्रमाण सिद्ध निर्गुण उपासना का निषेध करना युक्ति युक्त नहीं। और पूर्व पक्षी कह रहे हैं सरगुण की उपासना तो सारे करते देखे या सुने या, निर्गुण जी को करता ही नहीं है ना, मतलब ये गल ठीक नहीं है। नानु तिष्ठति कोपे तदिति चेन्ना मानु तिष्ठतु पुरुषस्य अपराधेन किमुपास्ति ही प्रदुष्यति का अपि एतद्। कोई भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना ना उपासना का ना अनुष्ठिति नहीं अनुष्ठान करता इति चेत, ऐसी यदि शंका हो तो उत्तर जाय है कि मां अनुतिष्ठतु मत उपासना करो, पुरुषस्य अपराधेन अनुष्ठान करने वाले पुरुष के अपराध से किम उपास्ति ही प्रदूषति, क्या उपासना दूष युक्त हो जाएगी। वो कह रहे आप निर्गुण की उपासना नहीं करता तो ना करे, सगुण भी करते निर्गुण भी नहीं करते, अंदर निर्गुण भी नहीं करते तो यह अर्थ यह नहीं भी निर्गुण की उपासना ही निष्फल हो गई होगी। जेड़ा करेगा उन्हें फल मिलेगा, जेड़ा नहीं करेगा उन्हें नहीं मिलेगा। जेड़ा करेगा हो सकती है, हाँ हो सकती है, हाँ यह अर्थ नहीं तो कोई करता नहीं है तो ना करे, जेड़ा करता नहीं है पुरुष का अपराध है वह ना करे, तो अर्थ यह नहीं निर्गुण उपासना ही भगवान है नाम है राम है वो राम को नहीं मानता तो नाम ने राम की महिमा थोड़ी कट जूगी। यही है निर्गुण उपासना को नहीं करता तो ना करे तो निर्गुण निर्गुण की उपासना की महिमा घट नहीं हो जाएगी। वेदादि प्रमाण से सिद्ध उपासना का अनुष्ठान यदि कोई नहीं करता है तो इतने मात्र से उपासना का प्रत्याग नहीं करना चाहिए। इसमें दृष्टांत कहते हैं कहते खाली नहीं है जी निर्गुण की उपासना, वेद कह रहा निर्गुण की उपासना करो तो जो कोई नहीं करना अर्थ यह नहीं भी उन्हें कोई नहीं करता चलो आप भी कर नहीं करनी, ये नहीं देखना कोई नहीं करता अं नहीं करने। इतोप्यातिशय मत्वा मान मंत्रान वाश्याधिकारिणः मूढ़ा जपंतु तेजो अति मूढ़ा कृषि उपासिताम। देख लो हाँ भी बंदा कि पा फट कर्म होने वाले जरा पा फट फल सू दे दे कर्म करने ज्यादा खुश है, जेड़ा हूं कम किया घड़ी सू फल मिल गया चल वो कर्म सारे कर्म खुश है और सौखा भी हो गए, वो सौखा भी हो गए। हम निर्गुण की सरगुण की उपासना वो मूर्ति सामने रख के ओके चरणा के मन लगाओगे ज ओदे मुखार बिंद नजर टकाओगे ये तो सरल है। निर्गुण जड़ा है ओदा तो स्वरूप ही नहीं, वो देही नहीं मन किसे टकाओगे, वो है भी कठिन, वो है भी कठिन और कोई करता इस वास्ते नहीं है कोई कठिन है। तो सगुण की उपासना सरल है इसलिए सारे ही करते हैं।
हाँ
जी
सारे
कर लेंगे, निर्गुण निर्गुण की उपासना थोड़ी कठिन तो नहीं करते, तो यह अर्थ यह नहीं भी निर्गुण की उपासना हो नहीं सकती, ये कह रहे हैं। अब उन्होंने दृष्टांत दे रहे हैं अपि इससे भी जैसे कालांतर में फल देने वाले सगुण ब्रह्म की उपासना से अतिशयम वशीकरण आदि मंत्रों में तत्काल फल देने की शक्ति रूप अतिशय उत्कर्ष को मत्वा मूढ़ मानकर मानकर विवेकहीन लोग वाश्यादिकारिण मंत्रान वशीकरण आदि मंत्रों को जपंतु जपते हैं। सरगुण की उपासना जी है वो देर ना फल दूगी, निर्गुण की योजना भी देर ना फल दूगी। तो सरगुण की उपासना छड़ के वशीकरण मंत्र जेड़े आ वो जपन लग जाते हैं, ये झट फल देंगे। हुण देवते की उपासना जी है वो टाइम लगेगा, और भूत प्रेत की फट फल देगी। भूत प्रेत की जी उपासना है वो तुरंत फल देगी झटपट, तब देवत्या की फल उपासना टाइम ला के फल दूगी। तो फिर वो भूत प्रेत की उपासना ज्यादा लोग पै जाते, यही हाल है। सगुण की उपासना जी है वो टाइम लगेगा, वो वशीकरण आदि मंत्र आ मंत्र पढ़ के फलाने वस्त कर लो, वो पढ़ के फट कर लेंगे, सारे गुर पेंदे है। ऐसा को मंत्र मिल जाए सानू बस जी उपासना मिली वह नहीं करना, एहोजे मंत्र सानू मिल जा किसी नूं दस दो फट जपना शुरू कर दूगा, उपासना दस दो नहीं करेगा। ते दिया तथा भी विवेक की जान सरगुण ब्रह्म का परित्याग नहीं करते, इसलिए विवेक की जान जेड़े है वो छोटी जी गल मिल गई या वशीकरण मंत्र तुहानू दे देने इहदी सिद्धि कर लो जल्दी फल मिलेगा, आंदा नहीं। विवेक की जी जेड़े पुरश है वह सरगुण की उपासना का त्याग नहीं करते, उन्होंने पिछे नहीं दौड़ते। तेव्या और जैसे निजम से अनुष्ठान की अपेक्षा रखने वाले उस मंत्र से भी कृषि आदि कर्म से अतिशय अर्थात निजम से पालन करने की अनवक्षता रूप उत्कर्ष को देखकर अतिमूढ़ अत्यंत विवेकी जन कृषिम उपासन कृषि कर्म का सेवन करते हैं। फल जरा खेती जड़ी आ जी जिदा भूत प्रेत की उपासना है वो तो फिर भी टाइम लगेगी, जी खेती है ये बीजो तो सवेरे थोड़े दिन बाद बढ़न लग जाओ, ये तुरंत फल देंदी आ, फिर वो भूत प्रेत की उपासना छो खेती वाल आ जाते, वशीकरण मंत्र छड़ करके तो फिर इधर आ जाएंगे जेड़ा झट फल दिता। मतलब कहना उन्होंने ये आई पुरुष वो कर्म के पेगा जेड़ा तुरंत फल दे, वो भावे घट घटिया ही हो, विवेकी जन जेड़े वो ये कम नहीं करते। अति मूढ़ों का पूर्व मंत्र अनुष्ठान आदि में प्रवृत्त ना होने पर भी मंत्र अनुष्ठान आदि परित्याग नहीं करता, देख ला उन्हें नहीं प्रवृत्त होया फिर भी अति मूढ़ जेड़ा है वह भी नहीं करता, जेड़ा वशीकरण का मंत्र है वह त्याग नहीं करता, आता खेती के बाद भी हो जाएगी पहला हम जरा काम कर लेंगे वो कर, वो मूर्ख भी सरगुण की जी विवेकी पुरुष है वो सरगुण की उपासना कैसे छड़ देंगे। उसी प्रकार संसार फल चाहने वाले निर्गुण ब्रह्म की उपासना का अनुष्ठान नहीं भी करते हैं, जो संसार का फल चाहते हैं आ चाहिए आ चाहिए वो निर्गुण की उपासना नहीं करते, तथा विमुक्षु निर्गुण ब्रह्म की उपासना का त्याग नहीं करते, इसलिए जो विमुक्षु है मुक्त होने की यदि इच्छा है वो निर्गुण की उपासना का त्याग नहीं करते, वो करन गई और जेड़े जेड़े संसार चाहने वाले आ वह निर्गुण की क्यों उपासना कर, संसार चाहिए संसार जड़ी चीज बढ़ाऊगी वो तो ही करना। इस प्रकार प्रसंग में आए हुए विचार के समाप्त करके अब प्रकृति निर्गुण उपासना का अनुसरण करते हैं। तिष्ठन्तु मूढ़ा प्रकृता निर्गुण उपास्तिरीयते विद्यैकात् सर्वशाखास्थान नापोपास्ते उपसंहर्तेरेत। मूढ़ा मन मूर्ख तिष्ठतु विवेकहीन मनुष्य बेशक रहे अर्थात विवेकहीन मनुष्यों की बात रहने दो, प्राकृता निर्गुण उपास्ती ईरते अब प्रकरण में प्राप्त निर्गुण उपासना को कहते हैं। मूर्ख है उन्होंने गल छोड़ दो, उन्होंने की करनी खेती करे खेती बाड़ी के उपासना कर रहा है, कोई भूत प्रेत की कर रहा है, कोई संसार की कर रहा है, कहते उन्होंने गल छोड़ो अपने विषय से आओ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ। ਅਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸ ਈਰਦ, ਅਬ ਪ੍ਰਕਰਣ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਇਕਾਤ, ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਨਾ ਸਰਵਤਰ ਏਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਾਖਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਹੀ ਵੇਦ ਕੀ ਸ਼ਾਖਾਓ ਮੇਂ ਸਥਿਤ, ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਕਹੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਨ ਅਤਰ ਉਪਾਸ੍ਯ ਗੁਣੋਂ ਕਾ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਸੰਹਰੇਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਕਰੇ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਣ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ, ਮੂਰਤੀ ਵੱਲ ਮਤ ਦੇਖੋ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਕੈਸੇ? ਇੱਕ ਲਵ ਥਾ ਨਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਚ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਲਵ ਥਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਵ ਬੇਲਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਚ ਆਚਾਰਿਆ ਦਰੋਣ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੁਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰਹੇਗਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਪਾਸਨਾ ਮੇਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਗੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਏਕ ਵਿਦੇਹ ਗੁਣ, ਦੂਸਰਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਗੁਣ। ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਵਿਦੇਹ ਗੁਣ ਕਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਨੰਦਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਆ, ਇਸ ਅਧਿਕਰਣ ਮੇਂ ਇਸ ਸੂਤਰ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰਕਾਰ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸੇ ਉਹ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਿਸ਼ੇਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਵਿਦੇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਕੇ। ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਸੇ ਅਨੰਤ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਮੁਖ ਸੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਸ਼ੇਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਮੁਖ ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਸੂਤਰਕਾਰ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਸੂਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਆਨੰਦਾ ਦੇਰ ਵਿਦੇਹ ਗੁਣ ਸੰਗਸਯ ਸੰਗ੍ਰਹੀਤੀ ਆਨੰਦਾਦਯਾ ਇਤਸਮਿਨ ਸੂਤਰੇ ਵਿਆਸੇ ਨਾ ਵਰਣਿਤਾ। ਆਨੰਦਾਦੇਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਰੂਪਤਾ, ਨਿਤਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਤਿਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਿਤ, ਸ਼ੁੱਧ, ਬੁੱਧ, ਮੁਕਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਤ, ਚਿੱਤ, ਆਨੰਦ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਕੀ ਹੈ ਆਨੰਦਾਦੇਹ? ਆਨੰਦ ਰੂਪਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਰੂਪਤਾ, ਨਿਤਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਇਤਿਆਦਿ, ਵਿਦੇਹਸਯ ਗੁਣ ਸੰਗਸਯ ਭਾਵ ਰੂਪ ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਕਾ ਸੰਗ੍ਰਹੀਤੀ ਉਪਸੰਹਾਰ ਅਰਥਾਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਨੰਦਾਦਯਾ ਆਨੰਦਾਦਯਾ ਪ੍ਰਧਾਨਸਯ ਇਤਿ ਆਤਮਨ ਸੂਤਰ, ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ ਆਨੰਦਾਦਯਾ ਪ੍ਰਧਾਨਸਯ ਇਤਿ ਆਤਮਨ ਸੂਤਰ। ਇਸ ਸੂਤਰ ਮੇਂ ਇਸ ਅਧਿਕਰਣ ਮੇਂ ਵਿਆਸੇ ਨਾ ਵਰਣਿਤਾ, ਵਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੂਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਸੂਤਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਦਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ, ਸੂਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਆਸ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਰੂਪਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਘਨਤਾ, ਸਰਵਗਤਾ ਆਦਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਧਰਮ ਸਰਵਤਰ ਉਪਾਸਨਾ ਮੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੈ ਸੂਤਰ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਆਦਯਾ ਪ੍ਰਧਾਨਸਿਆ, ਆਨੰਦ ਰੂਪਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਘਨ ਤਾ, ਸਰਵਗਤਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਘਨ, ਘਨ ਮੈਨੇ ਠੋਸ, ਉਹ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਠੋਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੜ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਚ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਘਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਘਨ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਅਸਥੂਲਤਵ ਆਗੁਣਤ ਅਣਵਤ, ਅਸਥੂਲਤਵ ਅਣਵਤ ਹ੍ਰਸਵਤ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ੇਧ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਵੀ ਉਪਸੰਹਾਰ ਉਪਾਸਨਾ ਮੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਆਨੰਦ ਆਦਿ, ਹੁਣ ਅਸਥੂਲਤਵ, ਅਸਥੂਲ ਮੈਨੇ ਜੋ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਗਾ ਸਥੂਲ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ, ਅਸਥੂਲ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਣੁਤਵ, ਅਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਹਰਸਤਵ, ਉਹ ਹਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਸ ਮਾਨੇ ਛੋਟਾ, ਦੀਰਘ ਮਾਨੇ ਬੜਾ, ਹਰਸ ਦੀਰਘ ਪਲੁੱਤ। ਇਹ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਸ ਦੀਰਘ ਪਲੁੱਤ, ਹਰਸ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ, ਦੀਰਘ ਦੋ ਮਾਤਰਾ, ਤਿੰਨ ਪਲੁੱਤ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰਸ ਛੋਟਾ, ਦੀਰਘ ਮਾਨੇ ਬੜਾ, ਪਲੁੱਤ ਮਾਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੁੱਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਬੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਨਾਣੇ ਮਾਲਾ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਣੇ ਜੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈ, ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਉਹ ਪਲੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਸ ਦੀਰਘ ਪਲੁੱਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਨਾ ਸਥੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਣੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਥੂਲਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਧਸਿਆ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਸਿਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤੀ ਤਥਾ ਵਿਆਸੇਨਾ ਸੂਤ੍ਰੇ ਅਸਮਿਨ ਉਕਤਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਤੀ ਤਥਾ ਅਸਥੂਲਾ ਦੇ ਔਰ ਸਥੂਲਤਾ ਹਰਸਵਤਾ ਆਦਿ ਨਿਸ਼ੇਧਸਿਆ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿਸਿਆ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇ ਅਭਾਵ ਰੂਪ ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਕਾ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤੂ ਅਕਸ਼ਰਾ ਦੀਆ ਤਵਤ ਰੋਧ ਸਮਾਨਿਆ ਤਦ ਭਾਵ ਤਦ ਭਾਵਾਭਿਆਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇਤਾ ਸੂਤਰ। ਅਪਸ ਦਾ ਵਸਤੂ ਦੂ ਦਪਤਮ ਇਤਿ ਅਸਮਿਨ ਸੂਤਰੇ ਇਸ ਸੂਤਰ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਅਕਸ਼ਰ ਦੀਆਮ ਨਾਮਕ ਅਧਿਕਰਣ ਮੇ ਵਿਆਸੇ ਨਾ ਉਕਤਾ ਵੇਦਾਂਤ ਸੂਤਰਕਾਰ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਵੇਦਾਂਤ ਸੂਤਰਕਾਰ, ਵੇਦਾਂਤ ਸੂਤਰਕਾਰ ਮੈਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੂਤਰ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਲੋਕ, ਐਸੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸੂਤਰ, ਤੇ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੰਤਰ ਸੁਰਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦੈਤ ਨਿਸ਼ੇਧ ਕੀ ਬੁੱਧੀਓ ਕਾ ਸੁਨਹਿਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਰਵਤਰ ਨਿਸ਼ੇਧ ਸੁਰਤੀਓ ਮੇ ਕਰਨਾ ਯੁਕਤੀ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਵੈਤ ਨਿਸ਼ੇਧ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਸਰਵਤਰ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤਥਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦ੍ਯ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਸਰਵਤਰ ਏਕ ਰੂਪ ਸੇ प्रतिभिज्ञा ज्ञान प्रतिभिज्ञान होता है। की कह रहे हैं प्रतिभिज्ञान, एक होंगे ज्ञान एक होंगे प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा क्यों कहते हैं, एक बार देखा है दोबारा फिर देखा जाए उन्होंने कहते प्रतिभिज्ञा ज्ञान। एक बार देखी वस्तु दोबारा फिर देखी जाए, पहला देखी जाए तो वो प्रत्यक्ष है, दूसरा दूसरा कह रहा प्रत्यक्ष प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष दोबारा देखा जाता, तो पहला देखा वैसे वो उनके लिए। इसलिए भी एकत्र उपासना में गुणों का संग्रह आवश्यक है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में गुणों का उपसंहार युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि गुण उपसंहार का निर्गुण उपासना में विरोध है। ऐसी शंका करके उत्तर कहते हैं कि ब्रह्म सूत्रकार वेदव्यास जी के कहे हुए गुणोपसंग्रह संग्रह का ही हम कथन कर रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न व्यास जी के प्रति हो सकता है, हमारे प्रति नहीं। वगैरह तुसी निर्गुण दे विच निर्गुण की उपासना करनी दस रहे जे ते गुण कित्थों लाया, कहते भी असं नहीं कह रहे, वेद व्यास जी का कहना है, वो तुम दस रहे असं नहीं कह रहे। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायाम गुण संग्रहिति न जुज्जेत यूपालेभ्यो व्यासं प्रत्येव माम नातु। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य विद्यायाम निर्गुण ब्रह्म तत्व की उपासना में गुण संग्रहिति गुणों का उपसंहार ना जुज्जेत युक्ति युक्त नहीं किंतु विरुद्ध है। इति उपालब्य इस प्रकार का दोष रूप व्यास प्रति एव व्यास जी के प्रति ही हो सकता है, माम तू ना मेरे प्रति नहीं, क्योंकि व्यास जी ने ही गुणोपसंहार के लिए कहा है, मैं तो उनके कथन का अनुवाद करने वाला हूँ। मेरे से दोष ना लगा, मैं तो तू पुछा सी मैं तेन दस रहा व्यास जी दे सूत्र जेडे व्यास जी है उन्होंने जो कहा वो दस रहा, ये दोस्त व्यास जी से ला रहा मेरे से नहीं ला रहा, मैं तो तेन दस रहा व्यास जी ने ऐसे क्या हिरण मश्रुत्वादि गुण विशिष्ट मूर्ति के कथन से पूर्वोक्त उपासना निर्गुण उपासना ही है। इस प्रकार यदि तुम मानते हो तो हम सिद्धांतियों का कोई विरोध नहीं। इस वार्ता को अगले श्लोक में कहते हैं। हिरण मश्रु सूर्य आदि मूर्ति मान अनुदारित अविरुद्धम निर्गुणमत्व मिति चेदुषिताम त्वया। हिरण मश्नु सूर्य आदि मूर्ति नाम स्वर्णमय मश्रु वाले मश्रु बने मश्रु रथ रथ अवय अवय जिनके पाग, जैसे स्वर्ण चमकता है ना ऐसे जेडे अंग चमकते हो, स्वर्णमय मश्रु वाले अर्थात अवयव वाले सूर्य आदि मूर्ति का मूर्तियों का अनुदाहरित उपदेश न करने से निर्गुणत्वम निर्गुण उपासना में गुणों का उपसंहार अविरुद्धम गुण उपसंहार करने पर भी विरोध नहीं है। इति चेत त्वया तुष्यतम ऐसी यदि कहते हो तो तुम संतुष्ट रहो, फिर तो ठीक ही है। तो हम कैसे सूर्य की उपासना करनी है, तो सूर्य की उपासना कैसे कर रहे हो, वो जो उदे अंग है कैसे है स्वर्णमय अंग है, ये उच्च गुण थोड़ी है, उदे अंग सोने वर्गे नहीं है, वो सोने की तरह दिखाई दे रहे हैं, चमकीले है वो तेज है उदे विच इतना तेज है सूरज दे विच कि उदे जेड़े अंग है स्वर्णमय प्रतीत होंगे जैसे दुर्योधन ने कह दिता सी तेरा शरीर बजर की तरह हो जाएगा, बजर नहीं सी वो, जे बजर हो गई तो मुड़े किदा फिर वो पत्थर हो जाए, जैसे अहल्या पत्थर हो गई सी, बजर की तरह हो जाएगा मतलब कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डालेगा। यही वो कह रहे भी जेड़ा सूर्य का शरीर है स्वर्ण का नहीं सोने का नहीं है, ओदी तरह है, ऐसे उपासना करो, ये गुण है, गुणों ये नहीं भी सोने का बना के उपासना करनी। अन्नाद आदि तथा स्थूलत्व आदि गुणों का उपास्य के स्वरूप में अंता प्रवेश न होने से तिस तिस गुण करके युक्त ब्रह्म की उपासना कैसे बनेगी? ठीक है रे, अंदर जरा आनंद आदि स्थूलत्व आदि तुसी दसे जे प्रवेश नहीं है केड़े च निर्गुण च, तो फिर उसकी उपासना कैसे बनेगी ब्रह्म की? ऐसी शंका करके उत्तर कहते हैं कि उन गुणों का उपास्य ब्रह्म के स्वरूप के अंदर प्रवेश ना होने पर भी वे गुण लक्ष्य बन सकते हैं, अतः उन गुणों के द्वारा ब्रह्म उपास्य बन सकता है। अंदर वो ब्रह्म दे विच गुण नहीं है, क्यों गुण क्यों नहीं है? वो तो निर्गुण है, वो तो निर्गुण है, गुण गुण भाव तो है नहीं, होते गुण गुण भाव होगा तो द्वैत हो जाएगा, एक गुणी हो गया तो गुण हो गए, तो फिर अंदर जो गुणों से है नहीं तो फिर गुणों का तुम नाम ही उपासना भी कर रहे जे, अंदर फल उदा ही मिलेगा, फल च कोई अंतर नहीं है, फल ची गुणा का चिंतन करके करोगे तो फल निर्गुण का ही मिलेगा, फल जेड़ा सतगुण का नहीं मिलेगा, फल निर्गुण का ही मिलेगा। तो मूर्ति नहीं है, मूर्ति ने कैसे ऐसे चिंतन करोगे? मूर्ति है तो हाथ में शंख है, ओदे हाथ से चक्कर है, ओदे हाथ से गदा है, ओदे हाथ से पद्म है, गले में वनमाला है, कंधों में पीतंबर है, ऐसे चिंतन मूर्ति का करोगे तो सरगुण हो गया है ना, तो ये करोगे सर्वशक्तिमान है, आदि अंत से रहता है, आदि अंत से रहता है, अजन्मा है, मेरा जन्म नहीं है, मैं आदि अंत से रहता हूँ, जे मेरा जन्म नहीं है तो मेरा मरण भी नहीं है, ये उपासना हुई क्योंकि ब्रह्म दी वो अपने आप से अपना स्वरूप ब्रह्म ही हो गया, निर्गुण भी हो गया, वो सगुण भी हो गई। हाँ जरा सकार रूप है, सकार रूप का चिंतन करोगे, वो आकार का चिंतन करोगे, सगुण की उपासना होगी, तो खाली गुणों का चिंतन करोगे मूर्ति में छड़ दोगे तो निर्गुण होगी ना, वो गुणा का मूर्ति का ध्यान नहीं करना, मूर्ति का ध्यान करोगे तो सगुण हो जाएगी, गुणा का गुणा चिंतन करोगे, गुणा का चिंतन करोगे तो फिर निर्गुण की उपासना हो जाएगी। स्वरूप चलेगा ना, गुणा नाम, गुणा नाम लक्ष्य कत्वे ना तत्वे अंतः प्रवेशनम इति चेदास्त्वे तमेव ब्रह्म तत्व उपास्यताम। गुणा नाम प्रोक्ता आनंद स्थूलता आदि आनंद पूर्वोक्त आनंद स्थूलता इत्यादि गुण लक्षकत्वे तत्वे उपलक्षक होने से उपास्य ब्रह्म तत्व के, देखो उपलक्ष किनू कहते हैं, एक होंगे ना लक्ष्य, एक होंगे उपलक्ष्य, उपलक्ष किनू कहते हैं जेड़ा कभी हो कभी ना हो, जैसे हम कोई आया किसी ने जई का घर पुछया जग सिंह का घर पुछया, तो उन्हें कहता वो जेड़े सामने ट्रैक्टर खड़ा ना वो देख ला वो जग का घर, हम ट्रैक्टर तो उठे सारा ही थोड़ी खड़ा रहना, वो थोड़ी देर में अपने खेतन जाएगा कम करने वास्ते, ट्रैक्टर तो खड़ा नहीं रहा उठे सदा, तो ट्रैक्टर ने किया कि उन्हें लक्ष्य का ग्रहण करा दिता, लक्ष्य का ज्ञान करा देता, वो आप रवे या ना रवे उन्होंने कहते उपलक्षण जाइगा घर तो देख कां बैठा कि नहीं घर कां ने की किया सारे पिंड चो घर अलग करके दिखा दिता, तो कां ने तो बैठे थे जाना, उन्होंने कहते उपलक्ष। ऐसे गुण जेड़े है वो ब्रह्मदेव उपलक्ष है, उपलक्षण है, लक्षण नहीं है, उपलक्षण है, उन्होंने चिंतन करना चाहिए। जो स्वरूप ही हो जाएगा गुण कितने रह जाएंगे, जो स्वरूप ही हो गया तो निर्गुण हो गया, फिर गुण कितने रह जाएंगे। गुणा ने किया कि उस वक्त पचा दिता, हाँ वो ट्रैक्टर जरा खड़ा से किया, गाय बद्धी से घर जिसे गाय बद्धी है वह आया फलाने का घर पुछा जिसे गाय बद्धी उपलक्षण, हाँ उपलक्षण ने उसे तक पचा दिता, वो रवे या ना रवे गुणा का जो चिंतन कर रहे जे गुणा ने तुम निर्गुण तक पहुंचा देना, फिर गुण थोड़ी रहने हैं, जो तो निर्गुण च पहुंच गए फिर गुण कितने रहे, बस घर तक पहुंचा सी ट्रैक्टर हम उठो भावे को लै जाए हट के, हम ट्रैक्टर उठे थोड़ी खड़ा रहना, उन्हें जरा काम करा करा दिता, फिर जो गुणा का चिंतन कर रहे उन्हें तुम निर्गुण च पहुंचा देना, गुण फिर उपलक्षक होने से उपास्य ब्रह्म तत्व के अंता प्रवेश न भीतर प्रवेश अर्थात स्वरूप में प्रवेश गुणों का नहीं है, उसके विच गुणों के प्रवेश नहीं है, उन्होंने उसे तक पहुंचा देना बस। इति चेत एवम एवम एव अस्तु, ऐसा यदि कहते हो तो तुम ऐसा ही हो, ब्रह्म तत्व उपास्यतम, अब उन गुणों से लक्षित ब्रह्म की उपासना करो, अंदा जित कहते ठीक है हम तू की कर, जो जो ब्रह्म के गुण है तेन दसे जेड़े है उन्होंने सिमरन कर, तू उपासना कर, जरा मैं आदि अंत से रहित हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में जानने वाला हूं, मैं पंच भौतिक नहीं हूं, मैं इन्होंने परे हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, ये गुणा का चिंतन हो गया, कभी निषेध मुख से कभी विदेह मुख से, निषेध मुख से जरा मैं बुद्धि नहीं हूं, निषेध मुख से हो गया मैं बुद्धि नहीं जानने वाला हूं, ये निषेध मुख से हो गया सीधा हो गया मैं सत हूं, मैं चित हूं, जिस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए अब उस प्रकार को दिखाते हैं। वाद विवाद शास्त्रार्थ समाप्त हो गया ना, सीधा दसन भी अन्नादि भी रस्थूलादि भी चा आत्मात्र लक्षिता अखंड एक रसा सो हम अस्मी इति एव उपास्ते, ऐसे उपासना करो, कैसे अखंड एक रसा सो हम इति एव उपास्ते, इदा करो अत्र अखंड एक रसा आत्मा, इन सूर्तियों में जो अखंड एक रस आत्मा अन्नादि भी ही अन्नादि विशेषण गुणों से चा अस्थूलत्वादि भी और अस्थूलादि निषेध गुणों से लक्षिता लक्षणा द्वारा बोधक हुआ सा अहम अस्मी, वह आत्मा मैं हूँ, इति एवं उपासते, इस प्रकार मुमुक्षु लोग उपासना करे, ऐसे उपासना करनी चाहिए। आतंक उपासना का ना दास्ता की वो जो अखंड आनंद सत चित आनंद एक रस जो ब्रह्म है वो मैं हूं, ऐसी उपासना करो। पूर्व उक्त पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान और उपासना का आकार समान ही मालूम पड़ता है, फिर इन दोनों का भेद किस कारण से है, ऐसी शंका करके उत्तर कहते हैं कि ज्ञान प्रमेय वस्तु के अधीन है और उपासना पुरुष के अधीन है, इस कारण दोनों का भेद सिद्ध होता है, ये पहले आया है। ज्ञान के अधीन है वस्तु के, ज्ञान केदे दीन है ते उपासना पुरुष दे, मैं केदी उपासना करनी, निर्गुण करनी है सरगुण करनी है, ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰਾ ਕੁੱਕੜ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਭਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇਗੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਚੌਥਾ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਨੇਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ? ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸੁਣੇਗੀ। ਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਾਸਨਾ। ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਚ ਗਿਆਨ ਚ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੋਧ ਉਪਾਸ ਪਯੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾ ਇਤੀ ਚੇਤ ਉਪਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੂ ਵਸਤੂ ਤੰਤਰੇ ਭਵੇਦ ਬੋਧ ਕਰਤੀ ਤੰਤਰ ਉਪਾਸਨਮ। ਬੋਧ ਉਪਾਸ ਤਯੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਹ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਭੇਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਤੀ ਚੇਤ ਉਚਿਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੂ, ਯਦੀ ਐਸਾ ਪੁੱਛਤੇ ਹੋ ਤੋ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਸੁਣੋ। ਬੋਧ ਵਸਤੂ ਤੰਤਰ ਭਵੇਤ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਯ ਵਸਤੂ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਉਪਾਸਨਮ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਤਰੀ ਤੰਤਰਮ, ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਉਪਾਸਕ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਜਹ ਗਿਆਨ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਮੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਗਿਆਨ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਬ ਗਿਆਨ ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾ ਦੂਸਰਾ ਭੇਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗਿਆਨ ਕੇ ਹੇਤੂ ਔਰ ਫਲ ਕੋ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕੋ ਸੇ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਇਤੇ ਬੋਧ ਦੋ ਅਨਿੱਛਾ ਅਨਿੱਛਾ ਜਮ ਨਾ ਨਿਵਰਤੇਤ, ਸੋ ਉਪਾਸਤੀ ਮਾਤਰ ਸੰਸਾਰੋ ਹਰੇ ਦਹਤਿਆਖਿਲ ਸਤਿਅਤਾਂ। ਬੋਧ ਵਿਚਾਰਾਤ ਜਾਇਤੇ, ਗਿਆਨ ਵਸਤੂ ਤੱਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਵਸਤੂ ਤੱਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜਮ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਜਿਸ ਬੋਧ ਕੋ ਅਨਿੱਛਾ ਗਿਆਨ ਮੁਝ ਕੋ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਅਨਿੱਛਾ ਨਾ ਨਿਵਰਤੇਤ, ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋਤਪੱਤੀ ਮਾਤਰਾ, ਉਤਪੰਨ ਹੋਆ ਵਹਿ ਬੋਧ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਾਤਰ ਸੇ ਸੰਸਾਰੇ ਅਖਿਲ ਸਤਿਅ ਕਾਮ, ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸਤਤਾ ਕੋ ਦਾਹਿਤੀ ਨਾਸ਼ਕਾ ਡਾਲਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸੰਸਾਰੇ ਅਖਿਲ ਸਤਿਅ ਕਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਪੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇਹ 'ਚ ਸੱਤਪਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਟ ਇਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਤਪਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੰਸਾਰੇ ਅਖਿਲ ਸਤਿਅ ਕਾਮ, ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਸੱਤਤਾ ਕੋ ਦਾਹਤੀ ਨਾਸ਼ਕਾ ਡਾਲਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਵਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਨਿਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੁਗ ਮੁਪਾਗਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ मुपा जीवन मुक्ति मनु प्राप्या प्रारब्ध क्षय मक्षीते तावता कृत कृत्या सन तत्व ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से कृत कृत होकर नित्य तृप्ति उपागता नतिशय सुख को प्राप्त होता है। जीवन मुक्ति अनुप्राप्य जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त होकर प्रारब्ध क्षय इच्छते भोग द्वारा प्रारब्ध कर्म के नाश की प्रतीक्षा करता है। बस फिर जो कहेगा भी बस भाई हूं तो आ प्रारब्ध नाश हो गई अपना विदेह मुक्त उस समय की है जीवन मुक्त जो प्रारब्ध नाश हो गई खत्म हो गई तो फिर हो जाएगा जीवन मुक्त। अब उपासना का ज्ञान से भेद सिद्ध करने के लिए उपासना के हेतु और फल को दिखाते हैं। ये तो ज्ञान का स्वरूप दसता तो फल दसता ज्ञान का स्वरूप की आदि अधीन है वस्तु की ओर फल की है वह ज्ञान जो हो जाएगा संसार जी सत्ता है वह नष्ट हो जाएगी ओर फल हो गया। अब उपासना दसते हैं आप तो उपदेशम विश्वासस्या श्रद्धालु विचारयन चिंतित प्रत्येरानंतर वृत्ति भी श्रद्धालु श्रद्धा युक्त अधिकारी आप तो उपदेशम यथार्थ वक्ता गुरु के उपदेश को उपास्य प्रतिपादक वाक्यों को विश्वासस्या अवचारयन विश्वास करके उस पर विचार करना नहीं करता हुआ अन्य प्रत्येक विजाति घटादि विषय के चिंतन से अनंत रीति वृत्ति भी विविधान रहित सजाति उपास्यकार वृत्तियों के द्वारा चिंतित उपास्य स्वरूप का निरंतर ध्यान करे। बस की करे आपत वक्ता जेड़ा गुरु है ओदे जेड़ा उन्हें जेड़ी गल कह दी उत्ते विश्वास कर करके तो पासे दा जेड़ा चिंतन है निरंतर ऐसी वृत्ति बनावे दूजिया वृत्तियां जी घटा दी वृत्ति है संसारिक उन्हां दा बार बार निषेध करता रहे तो जैसे साकार दी वृत्ति है ऐसी वृत्ति बनाता रहे। बस करें उपास्य स्वरूप का भेद अभिमान रूप फल भी उत्पत्ति तक चिंतन करने के अनंतर भी अमरण उस अभिमान को धारण करे इस वार्ता को अगले श्लोक में कहते हैं।